नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति पर बल दिया, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति का आश्वासन दिया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में फोन पर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बीच रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक पारित, इससे उनका सम्मान और गरिमा सुनिश्चित होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, स्थायी कमीशन से वंचित महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को पेंशन लाभ मिलेगा। और पश्चिम एशिया युद्ध के 25वें दिन भी इसराइल और ईरान के बीच मिसाइलों से हमले जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति पर बल दिया है। राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने तनाव कम करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का मुद्दा कई देशों के साथ बातचीत में उठाया है।
हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध 3 सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इसने विश्व भर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है।
इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
मैं आपके माध्यम से देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं है। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना ही आगे बढ़ने का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में फोन पर बातचीत की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि खुला, सुरक्षित और सुलभ होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए वे संपर्क में रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत की रक्षा तैयारियों पर इसके प्रभाव की समीक्षा की। रक्षा मंत्री को वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य, संघर्ष के संभावित विस्तार से देश पर प्रभाव तथा वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष से प्राप्त संचालन और तकनीकी सबक का निरंतर अध्ययन किया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है तथा सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में लोगों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने का आग्रह किया।
सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशियंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है, एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के अपर सचिव असीम आर महाजन ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक खाड़ी क्षेत्र से लगभग 4,02,000 यात्री भारत लौट चुके हैं। इस बीच पश्चिम एशिया युद्ध के 25वें दिन इसराइल और ईरान के बीच मिसाइलों से हमले जारी हैं। ईरान द्वारा आज सुबह मिसाइल हमलों के बाद इसराइल हाई अलर्ट पर है। एक मिसाइल का गोला मध्य तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में गिरा, इससे कई लोग हताहत हुए और इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। जवाबी कार्रवाई में इसराइल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य स्थानों पर लगभग 50 ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
पूरे क्षेत्र में संघर्ष सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही स्तरों पर बढ़ रहा है। लेबनान में तनाव तेजी से बढ़ा है। बेरूत ने नव नियुक्त ईरान के राजदूत को अवांछित घोषित कर दिया है और तेहरान पर देश को संघर्ष में और अधिक उलझाने का आरोप लगाया है। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने कई ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की सूचना दी है। कतर ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इस बीच सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अधिक सक्रिय सैन्य समन्वय के संकेत दिए हैं। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। इसके अंतर्गत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट एक नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश की जाँच करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प है और एनडीए सरकार सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर अपराध से संबंधित लगभग 250 से अधिक मामलों की जांच शुरू की है। इस कारण लगभग 36,000 करोड़ रुपए की अवैध आय की पहचान हुई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मनमानी मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण स्थायी कमीशन से वंचित रखी गई सेना, नौसेना और वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी अब पूर्ण पेंशन लाभ की हकदार होंगी। न्यायालय की पीठ ने कहा कि ये माना जाएगा कि इन अधिकारियों ने पेंशन पात्रता के लिए आवश्यक 20 वर्ष की सेवा पूरी की है, भले ही उन्हें पहले ही सेवा मुक्त कर दिया गया हो। यह निर्णय विंग कमांडर सुचेता एडन की याचिका सहित कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत याचिकाकर्ताओं से राज्य में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित अपनी शिकायतों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में सुचारू रूप से संपन्न हुई है। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच हुई। कल नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन था। बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान एक ही चरण में 9 अप्रैल को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में दिल्ली का तीसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 2024-25 में 3.67% से बढ़कर 2025-26 में 3.72% होने का अनुमान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम में त्रासदीपूर्ण आग दुर्घटना मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इस घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने पीड़ितों और घायलों के लिए मुआवजे की जानकारी सहित 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अंद्राबी की 2 सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी इसी मामले में 30 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगभग 2% के उछाल में रहे। सेंसेक्स 1372 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 74068 पर बंद हुआ। निफ्टी 400 अंक बढ़कर 22912 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ। कमोडिटीज बाजार में ब्रेंट क्रूड 3.3% बढ़त के साथ $103.20 प्रति बैरल पर चल रहा था।
देश में इच्छा मृत्यु के लिए कानूनी मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का आज शाम नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बीटेक के छात्र 31 वर्षीय हरीश राणा पंजाब विश्वविद्यालय में बालकनी से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने के बाद 1 दशक से अधिक समय से कोमा में थे। वे एम्स में डॉक्टरों की एक विशेष टीम की देखरेख में थे। आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर नई रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंच गई। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तमिलनाडु की बर्निका एल्गोवन ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 4.22 मीटर की ऊंचाई पार कर ये नई उपलब्धि हासिल की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति पर बल दिया। तेल गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति का आश्वासन दिया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में फोन पर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बीच रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक पारित, इससे उनका सम्मान और गरिमा सुनिश्चित होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा स्थायी कमीशन से वंचित महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को पेंशन लाभ मिलेगा। और पश्चिम एशिया संघर्ष के 25वें दिन भी इसराइल और ईरान के बीच मिसाइलों से हमले जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।